अपने जन्म का करो विचार, मानुष देह जग दुर्लभ सा। मनुष्य जन्म सारी योनियों में दुर्लभ है, अर्थात बड़े भाग्य से ये जन्म मनुष्य को मिलता है, अर्थात मनुष्य का शरीर मिलता है। जब ये बहुत कीमती चीज है पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी इतनी बड़ी सृष्टि है, इसमें यदि सबसे कोई कीमती वस्तु है तो मनुष्य शरीर है, मनुष्य देह है या मनुष्य जन्म। तो सारे विश्व में जो सबसे कीमती चीज है उसकी फिर कीमत तो अदा करनी पड़ती है। जैसे मान लिया जो वस्तु हम बाहर जानते हैं, कहते हैं भाई डायमंड बड़ा कीमती है, घर में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं आप संभाल के रखते हो, लेकिन जो हीरा है उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से संभाल के रखते हो, कहीं किसी के हाथ ना पड़ जाए, कहीं 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 वो खो ना जाए, ले ना जाए, तो उसकी विशेष केयर करते हो जिसकी आप कीमत समझते हो। तो प्रभु खुद वाणी के रूप में अपना निर्णय दे रहे हैं। प्रभु तो हमको नहीं बहकाएंगे, मनुष्य तो हमको बहका सकता है, जानकर भी बहका सकता है, अज्ञानता में बहका सकता है, लेकिन प्रभु वो तो केवल हमारे कल्याण की सोचते हैं। हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने ये मनुष्य देह को इतनी कीमती दी, जो हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल है, जिसके कारण हमको ये देह मिली। तो इसलिए सबसे बेशकीमती चीज है और दुर्लभ है ये, तो फिर इसके बारे में मैंने उसी कीमत के अनुसार इस पर विचार करना। और यदि विचार नहीं करते हैं तो कहते हैं विवेकहीन जो मानुष होई पशु समान जीवन सुख हो। और इस विवेक के साथ मैंने यदि विचार नहीं किया, जो कि सत्पुरुषों की बात, सत्पुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों के विचार हमको उसकी कीमत बता रहे हैं, उसके अनुसार यदि मैंने विचार नहीं किया तो फिर मैं पशु के समान ही हूं, पशु में मुझ में कोई अंतर नहीं। और ये बिल्कुल सत्य बात है। थोड़ा सा भी यदि हम इसका विश्लेषण करके देखें कि पशु क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, तो ये साफ स्पष्ट हो जाएगा कि मैं भी पशु कर्म कर रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख से रूप का रस लेते हैं, कान से राग का बातों का रस लेते हैं, नासिका से खुशबू का रस लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का रस लेते हैं और जिह्वा से स्वाद का रस लेते हैं। तो पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे, तो इनसे हम रस लेते हैं वस्तुओं का। और रस का मतलब क्या हुआ कि उसके द्वारा हम सुख उपभोग करते हैं। तो पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मैं सुख का अनुभव करता हूं और सुख के लिए लालायित रहता हूं, उसी और सुख की प्राप्ति के लिए फिर मैं पुरुषार्थ करता हूं। बस ये मुझको जीवन जीना आता है, अपने लिए भी यही करता हूं, बच्चों के लिए भी यही ख्वाब देखता हूं और देश के लिए भी यही ख्वाब देखता हूं। इसके ऊपर मेरी कोई सोच नहीं है यदि मैं सांसारिक मनुष्य की तरह से जीता हूं तो। अब पशु देख लें वो क्या करता है, उसके पास भी ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, इन्हीं पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो संसारी सुख भोगता है। और पशु और मनुष्य में कितना बड़ा अंतर है, मनुष्य जिसके पास बुद्धि दी है भगवान, वो इन सुखों को बढ़ाने के लिए सारी शिक्षा ग्रहण करता है, इन सुखों को बढ़ाने के लिए सारे समाज के अंदर जो है वो चालाकियां करता है, मकारियां करता है, इन्हीं सुखों को बढ़ाने के लिए बच्चों के बारे में ख्वाब देखता है। इसके ऊपर मनुष्य की कोई सोच नहीं, चाहे वो किसी भारत किसी देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सबके जो संसारिक मनुष्य हैं उनकी एक ही अप्रोच है कि मैं अपने देश के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने लिए अधिक से अधिक सुख इकट्ठे कर सकूं। और उसके लिए जो साधन है, एक शिक्षा एक साधन है, वस्तुएं एक साधन है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं इकट्ठी कर सकूं। तो पूरा पुरुषार्थ, पूरी अक्ल मैं केवल उस काम में लगाता हूं जिसका नाम है सुख, और वो इन पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। अब पशु और पक्षी में भी यही पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं पड़ता ना, वो 100 साल बाद की या 50 साल बाद की 5 साल बाद की सोचते, मैं कितनी लंबी सोचता और उस सोच के अनुसार कितना पुरुषार्थ करता, कितनी मेहनत करता। आप देखते होंगे बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, सबको आईएएस बनना है, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं बच्चे, नहीं देखते तो माता पिता उनको दिखाते हैं और बेचारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं सुसाइड कर लेते हैं। जैसे जैसे एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे मनुष्य के लिए जीना और कठिन होता चला जा रहा है। कितना भी पढ़ ले उसकी जॉब की गारंटी कोई नहीं, तो कितनी लंबी मेरी सोच है। और जो ख्वाब माता पिता अपने पूरे नहीं कर पाते वो ख्वाब बच्चों के द्वारा पूरे करने चाहते हैं, और बच्चे ये इंटरव्यू से लो तो वो साफ कह देते ये तो हम माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं पढ़ने के लिए। उनकी सामर्थ्य नहीं होती, उनकी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए कितने डिप्रेशन में वो पढ़ते हैं, कितने डिप्रेशन में वो जीते हैं। माता पिता का ख्वाब है वो, उस दिल में भी सपने देख रहे हैं और बच्चे की लाइफ कहां जा रही है उनको पता ही नहीं इस बात। तो सुख की आशा में मैं निराश होकर दुख भोग रहा हूं, मेरी बुद्धि में होश ही नहीं है, कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला। तो संसार ही मेरा गुरु है, संसार के सुख ही मेरा लक्ष्य है, इसके ऊपर मनुष्य की, एक आम मनुष्य की सोच ही नहीं है। तो इस सोच ने इसी डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर लोगों को, मनुष्यों को कितना दुखी कर रखा है, कितना चिंतित कर रखा है, कितना बोझ लेकर ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप विचार करके देखो। तो वो कह रहे हैं कि विवेकहीन जो मानुष होई पशु समान जीवन सुख। तो ये जो संसार का सुख भोगने का लक्ष्य बनाना और मैक्सिमम उसके लिए पुरुषार्थ करना, कोशिश करना, ये जो वे ऑफ लाइफ है ये पशु समान जीवन है, क्योंकि इसके पीछे आपको सुख, इंद्रियों का सुख भोगने के अलावा कोई दूर दूर तक लक्ष्य नहीं, इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, और एंटायर वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है, कोई इसे बचा नहीं। लेकिन सत्पुरुष कुछ आगे की बात कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, अब विवेक की बात कर रहे हैं, सत विवेक ये ही सुखरास पर उपकार में होए निवास। अब ये वे ऑफ लाइफ नहीं सत्पुरुष दे रहा है, ईश्वर हमको दे रहा है। वो कहता है कि सत विवेक यही सुखरास, तेरे मन का जो चैन है, जो छिना हुआ है संसारी भोगों का, संसारी सुखों का कारण, कहते हैं कि सत विवेक उस सुख की रास है, उस सुख का राज है सत विवेक। और सत विवेक प्रारंभ कहां से हो रहा है, कह रहे पर उपकार में होए निवास। पर उपकार की बात आई है, पर उपकार में क्या होता है, आदमी दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करता है, यही तो परोपकार है। दूसरा व्यक्ति जिस कारण से भी परेशान है, जिस कारण से भी दुखी है, तेरे अंदर यदि कोई कैपेसिटी है तो तुझको, तेरे अंदर विवेक है तो तब की बात हो रही, तुझको उसका दुख दिखाई पड़ना चाहिए, और उसके दुख के निवारण के लिए तेरी जो भी सामर्थ्य प्रभु ने दी है उसके लिए तुझको जो है वो पुरुषार्थ करना चाहिए। अब बताइए परोपकार जब आप करते हो तो आप सबका भी अनुभव होगा, कोई ऐसा व्यक्ति पता लग गया, चाहे घर के दरवाजे पर आ गया या बाजार में पता लग गया या कैसे ही पता लग गया, बेचारा इतना परेशान है कि उसको खाने को भी नहीं। एक आम व्यक्ति भी देखोगे उसका दिल पसीज जाएगा, अरे भूखा है ये, 2 दिन से खाना नहीं मिला इसको, तो उसके अंदर एक दर्द पैदा होता है, एक भावना पैदा होती है कि ये तो एक बेसिक चीज है, बेचारे को खाने को नहीं है, वो कैसा भी हो वो खाने को, उसको पैसे दे दे या खाना खिला दे उसको, ये साधारण सी बात, इसमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, गहरी सोच नहीं चाहिए। तो ये क्या है, यही उपकार है कि दूसरे का दुख जब आपको दिखाई पड़ने लगता है और तेरे पास जो भी साधन है उसमें से तू कुछ जो है उसका दुख दूर करने के लिए जब इस्तेमाल करता है, तब तू अपने मन की तरफ देख, अपनी बुद्धि की तरफ देख, तुझे एक ठंडक सी फील होती है कि प्रभु ने एक मौका दिया है, एक भूखे को खाना खिलाने का अवसर मिल गया। यदि वास्तव में भूखा है और तुझको मौका मिल गया तो देख ले कि तेरे अंदर खुशी होती है या नहीं होती। अध्यात्म में इसको सुख कहते हैं, जो तेरे मन को अंदर ले जाए, जो तेरी बुद्धि को परोपकार करके ईश्वर से जोड़ दे, ये आंतरिक सुख। तो इसका मतलब जिस विवेक की बात हम कर रहे हैं, वो विवेक का क्या मतलब हुआ कि जीवन का वो प्रोग्राम जो मन को अंदर ले जाए और जीवन का वो प्रोग्राम जो मन को बाहर ले जाए, ये मनुष्य जन्म की बर्बादी। ये पांच विकार का जीवन है जिसको महाजी कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संसार के सुख भोगने का लक्ष्य लेकर जो मैं जीता हूं, तो ये आपके अंदर पांच विकारों को जन्म देता है जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। मुझे इस बात का पता है या नहीं है, इसके विज्ञान का मुझे पता है या नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिसको पता है वो इसको साधारण रूप से इसका एनालिसिस करके सीख सकता है कि संसार के सुख भोगने का मतलब सीधा सीधा है इन पांच विकारों को मन के अंदर जन्म देना या उस विकार को मल्टीप्लाई करना। तो इसीलिए जब अध्यात्म की बात आती है, विवेक की बात आती है, तो पहला सूत्र कहते हैं कि परोपकार की भावना तेरे अंदर होनी चाहिए। यहां से प्रारंभ होता है। और परोपकार का मतलब क्या हुआ? दूसरे का दुख तुझको दिखाई पड़ना चाहिए। अभी तो तू सुख के लिए जी रहा था, पूरा पुरुषार्थ सुख प्राप्ति के लिए कर रहा था। जब तुझे दूसरे का दुख दिखाई पड़ने लगता है, तब तेरे अंदर दूसरी भावना विकसित होती है कि दूसरे का दिल यदि कहीं से दुख रहा है या कष्ट में है, तो जो मेरी सामर्थ्य है मुझे उसके उसकी कष्ट जो है निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, सत विवेक साहब परगास विवेकी खोजे तत् अविनाश। तो सत विवेक है क्या होता है, क्या देता है आपको? साहब परगास, तेरी बुद्धि के अंदर उस प्रभु का प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का मतलब बुद्धि के अंदर उस ईश्वर का विश्वास आ जाता है कि वो अंतर्यामी है। जिस प्रकार मेरा मन अंतर्यामी है, मुझे पता है मन बाहर नहीं है, मन अंदर है, इच्छा अंदर है, मन के कारण तकलीफ अंदर है, तो उसी प्रकार प्रभु भी तो अंदर है। किसी को डाउट होता है तो देख ले, तेरे शरीर में जो जान है, कोई डॉक्टर इसका मालिक है, कोई संसार का मनुष्य इसका मालिक है? तुझे पता है तेरे शरीर में जान है, तेरा शरीर जीवित है, लेकिन कभी नहीं सोचता ये जीवन आया कहां से, मेरे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जहां से ये जीवन आ रहा है। पूरी दुनिया में कोई भी इस जीवन का मालिक नहीं है, जिसको भी आप जानते हो, चाहे सारी दुनिया का विज्ञान भी आप जानते हो, सारी फिलॉसफी भी आप जानते हो, लेकिन इस जीवन का मालिक कोई भी नहीं है। अरे जान है, कोई तो मालिक होगा इसका, मैं खुद इसका मालिक नहीं हूं, संसार इसका मालिक नहीं है, लेकिन बिना जीवन के ये शरीर चलेगा ही नहीं, तो जीवन की कोई कीमत नहीं। जिसके आधार पर हर वस्तु की कीमत है उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसी मेरी सोच है। मैं इतनी कीमती चीज वस्तु, इतनी कीमती चीज मेरी देह में मौजूद है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूं। जरा जरा से सुख के लिए कैसे कैसे अपना चरित्र बर्बाद कर देता हूं, कैसे कैसे लोगों का चरित्र खराब कर देता हूं, समाज में कैसा जहर घोल देता हूं। और जो जीवन है जिसके आधार पर मेरा शरीर चल रहा है, जिसके आधार पर मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, जिसके आधार पर मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, उस जीवन के बारे में तो सोच ही कोई नहीं। यदि नहीं है तो याद रखिए, तुम मूर्ख इंसान है, पशु है, वास्तव में 100% तू पशु है, इस ऊपर कुछ भी नहीं है। तू इंसान कहलाने योग्य ही नहीं है, क्योंकि तू जीवन के बारे में ही नहीं जानता जिसके आधार पर तेरा शरीर खड़ा हुआ है, जिसके आधार पर तू सुख भोग रहा है, जिसके आधार पर तू ज्ञान सीख रहा है। क्योंकि संसार में इसकी जरूरत ही नहीं समझते, वो तो सुखों की जरूरत समझते हैं, अपने लिए भी, देश के लिए भी, दुनिया के लिए, सारी दुनिया मिलकर इसी के लिए प्लानिंग करती है। लेकिन सतपुरु जब धरती पर आता है, अवतार जब धरती पर आता है, वो इसकी बात नहीं करता। कृष्ण क्या बात कर रहे हैं अर्जुन से, इनको मार दे और सुख भोग, मैं तेरे साथ हूं, मेरी शक्ति काम करेगी, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तू सुख भोग। कृष्ण ने एक बार भी कहा अर्जुन से, वो तो यही कह रहे हैं, इनका प्रारब्ध आ गया, जैसे प्रारब्धवश ये मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे ये सारे मरने के लिए इकट्ठे हुए, ये सारे मारे जाएंगे। लेकिन अर्जुन डर रहा है, क्यों? वो उनको शरीर समझ रहा है, ये मारे जाएंगे। तब कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, ये शरीर नहीं है, तू भी शरीर नहीं है, किसकी मौत का इंतजार कर रहा है, और मारा जाए, ये देह नहीं है, ना तू देह, इनका प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ? पूर्व जन्म के जो कर्म किए थे इन्होंने, उसके फल के रूप में इनको ये प्रारब्ध मिला है कि आज ये मरने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए, और यहां भी ये मरेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो मन है, इनके अंदर जो बुद्धि है और इनके अंदर जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बच जाएंगी, इनको कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नया शरीर खड़ा हो जाएगा, और वो भी इन्होंने जो कर्म किए हैं वर्तमान जन्म में, उसके फल के रूप में अगले जन्म में इनको प्रारब्ध मिलेगा, उसी हिसाब से इनके शरीर की रचना होगी, कुछ भी नष्ट नहीं होगा। अब देखिए कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के अंदर विवेक है, लेकिन बुद्धि पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण भ्रमित हो रही है, तो कृष्ण उसकी सहायता कर रहे हैं, उसके भ्रम का निवारण कर रहे हैं। यही तो ज्ञान उन्होंने अर्जुन के साथ, प्रारब्ध तो नहीं बदला उन्होंने, यदि प्रारब्ध बदलते वो तो सबसे पहले तो अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसको बचाते वो, कि अर्जुन मेरा प्रिय है तो उसके बेटे को तो मैं बचा ही सकता हूं, ये तो कितना बड़ा दुख होगा जब उसका बेटा मारा जाएगा। कृष्ण को पता है बेटा मारा जाएगा, लेकिन अर्जुन को नहीं बता रहे वो मारा जाएगा। अब बताइए, जो प्रभु अवतार रूप में मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं उनका बड़ा प्रिय शिष्य हूं, फिर भी मेरे प्राण के बदलने की बात वो नहीं कर रहे, 1% भी नहीं कर रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध है वो घटनाक्रम घटके रहेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। विचार करिए कि मनुष्य जन्म लेकर मैं ईश्वर के हाथ में 100% गुलाम हूं। जो मेरे भाग्य में दुख है, जो मेरे देश के भाग्य में दुख है, जो दुनिया के भाग्य में दुख है, वो सब आएंगे और जाएंगे, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखिए कि प्रारब्ध के हाथ में मैं पशु की तरह से हूं, जैसे पशु में बुद्धि नहीं होती, जो प्रारब्ध उसको वैसे जीवन जीने को मिलता है, मैं भी वैसा ही गुलाम हूं, मुझको भी वैसा ही जीवन जीने को मिल रहा है, कि मेरे हाथ में एक चीज थी, इस बुद्धि के अंदर विवेक में धारण कर सकता था। विवेक प्रारब्ध के अधीन नहीं होता है, इसलिए राम के गुरु वशिष्ठ ने परिभाषा की, जो मनुष्य संसार में कर्म करता है ये तो उसका प्रारब्ध है, ये उसका प्रारब्ध है, परंतु ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए जो मन बुद्धि का उपयोग करता है ये उसका पुरुषार्थ। तो अब बताइए, पुरुषार्थ देह का नहीं था, पुरुषार्थ मन बुद्धि का था, जो नष्ट नहीं होती, शरीर मर जाएगा तब भी ये नष्ट नहीं होगी, ये बच जाएगी। तो इस जन्म में मैं इस मन बुद्धि का रिफाइनमेंट करूं ना, इसका शुद्धिकरण करूं ना मैं, इसके लिए विवेक था। मैं कौन सा विवेक लेके जी रहा हूं? मैंने पैसे बहुत कमा लिए, बड़ी ऊंची पोस्ट धारण कर ली मैंने, बड़ा अच्छा बिजनेस चला दिया मैंने, कितना होशियार इंसान है, यदि सतपुरुष के आगे खड़े हो तो तू तो सबसे महामूर्ख है, तूने तो सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद की, ये तो ईश्वर का होश ही नहीं आ पाया। ईश्वर का होश आया भी तो उसके आगे मिन्नतें मानता है, क्या प्रभु मेरी जो योजना है वो सफल कर दो, मेरा जो काम है वो तो सफल कर दो, ये मेरी बुद्धि खड़ी है, यहां मेरी बुद्धि खड़ी है, इसके लिए मैं ईश्वर को मानता हूं, इसके ऊपर मेरी सोच ही कोई नहीं। तो इसीलिए सत्य विवेक साहब परगास, विवेक की खोजे तत् अविनाश। तो जिसके अंदर विवेक है, सही बुद्धि है जिसकी, वो उसकी बुद्धि में साहब का प्रकाश होता है, अर्थात ईश्वर का महत्व उसकी बुद्धि में होता है। वो अपने मानव जन्म में सबसे कीमती वस्तु अपने जीवन की वो ईश्वर को समझता है। और जब सबसे कीमती वस्तु ईश्वर को समझेगा जो कि इस देह के अंदर मौजूद है, मन जिसका मैं शिकार हूं वो इस देह के अंदर मौजूद है, और इस देह का मालिक जो ईश्वर है वो इस देह के अंदर मौजूद है, तो मैं क्या सिलेक्ट करता हूं, मन की खुशी या ईश्वर का भजन? इसलिए यदि विवेक है तो कहते हैं विवेकी खोजे तत् अविनाश, उस अविनाशी प्रभु की, अविनाशी ईश्वर की इस देह के अंदर खोज करता है, और वो मिल जाती है। महाराज जी को मिली नहीं मिली, रामकृष्ण परमहंस को वो प्रभु मिले या नहीं मिले, महर्षि रमण को प्रभु मिले मिले या नहीं मिले, गुरु नानक को वो प्रभु मिले या नहीं मिले देह के अंदर? तो अनगिनत भक्त हो गए, लीला हो गई, स्त्री भी है पुरुष की, क्योंकि बुद्धि जो है स्त्री पुरुष नहीं होती, देह स्त्री पुरुष होती, ये तो जड़ है। तो प्रभु की निगाह में, गुरु की निगाह में मेरी पहचान शरीर से नहीं है, मेरी पहचान मेरी मन बुद्धि से। इसलिए गुरु के सामने जब मैं पहुंचता हूं तो सबसे पहले वो मेरी मन बुद्धि को पढ़ लेता है, उसको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आपके मन बुद्धि के अनुसार आप पर वो कृपा करता है। यदि जब मैं कुछ पुरुषार्थ करके आए हो, सतमार्ग पर चलकर आए हो, तो यहां आपको वो अपना शिष्य बना लेता है, अर्थात प्रभु मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए तुझको काबिल बना देता है। ये गुरु का काम, और तू वहां भी आशा करता है, गुरुदेव बीमारी से बड़ा परेशान हूं, मेरी बीमारी दूर कर दे। जो संसारी बुद्धि के लोग हैं, चले भी जाए उनके पास, यही आशा करेंगे मेरा बेटा बड़ा बीमार है उसको ठीक कर दो। महर्षि रमण के पास तो एक लेडी आई, एक महिला आई मरे हुए बच्चे को लेकर, उसको पता लग गया महर्षि रमण तो ईश्वर है, सब कुछ कर सकते हैं, आगे रोने लगी मेरे बच्चे को जिंदा कर। तो महर्षि रमण के, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, उसके अंदर निश्चय था, पूरा दिन नहीं हो, फिर उनके शिष्यों ने उसको हटा के ये बिठा दिया, फिर समझाया उसको कि महर्षि ये काम नहीं करते थे, लेकिन उसका निश्चय टूट ही नहीं रहा था। अगला दिन हो गया, फिर वो महर्षि के आगे गिड़गड़ाई, महर्षि समझ रहे हैं इस बात के लिए कि मोह में इस माँ की आंख, बुद्धि की आंख बंद है बिल्कुल, जो असंभव कार्य है ठीक है, सिद्धियां तो बहुत कुछ होती है, सतपुरुष चाहे तो जिंदा कर सकता है भाई, ईश्वर यदि कोई चाहे तो उसके लिए कुछ असंभव है क्या? सतपुरुष कोई मनुष्य नहीं है, शरीर नहीं है, वो उस शरीर से प्रभु डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, बस ये समझ। तो फिर अगले दिन जाकर उसको समझ आ गई कि ये काम नहीं होगा, तब उस बच्चे को उसने फिर जो है वो उसका क्रियाकरण किया। कैसे कैसे लोग, उनकी कैसी समझ होती है, संसारी समझ, और एक सदगुरु मिल भी जाए तो उससे क्या आशा करेंगे कि मेरा काम कर दे जो मेरी इच्छा। तो वो प्रभु जो अंतर्यामी है वो अमर जीवन देता है, खुद अमर है। तो इसीलिए यदि पूर्ण गुरु से आपकी भेंट हुई है या पूर्ण गुरु का आश्रय लेकर आपको आगे चलने का मौका मिला है, तो फिर वो कहते हैं कि विवेकी खोजे तत् अविनाश। तो उसकी बुद्धि में यदि विवेक आया है, उसने शास्त्रों को, सत्रों, महादेशों को समझा है, तो क्या करता है वो अविनाशी, जिसका नाश नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, इटर्नल लाइफ है वहां पर, सदैव का जीवन है वहां पर, तो अंतर्यामी प्रभु की खोज करता है। और फिर कहते क्या है, सत विवेक तब पूरन होई, साचे नाम में विरत समोई। ये वृत्ति का नाम है, इसी को बुद्धि वृत्ति कहते हैं, या बुद्धि का सत निश्चय कहते हैं। तो बुद्धि का जो निश्चय है, इसी को महाजी सुरत भी वर्ण कह रहे हैं, इसी को जीव भी कह रहे हैं, इसी को जीवात्मा भी कह रहे हैं, कई नाम इसके। तो ये बुद्धि वृत्ति है, ये ईश्वर के साथ एक हो जाती है, साचे नाम में विरत समोई, वहां जाके पता लगता है ये पूर्ण विवेकी पुरुष है। इसलिए पूर्ण विवेकी पुरुष जो है उसी को सतगुरु कहते हैं। तो मेरी ये जो विश्व रूपी जीवन का दुख था, वो मेरी संसारिक बुद्धि के कारण था, जिसके कारण मैं मनुष्य जन्म लेकर भी पशु बना, घूमता रहा संसार में, संसार के और इंद्रियों के सुख भोगने के लिए, तो जब मेरे अंदर विवेक आता है और जो पूर्ण गुरु के आश्रय से या पूर्ण गुरु के ज्ञान से या शास्त्र के ज्ञान से ये विवेक जब परिपक्व होता है, उसके आधार पर जब मैं अंतर्यामी ईश्वर की खोज करता हूँ और जब ईश्वर उस ईश्वर के साथ एक हो जाता हूँ, अर्थात मेरी वृत्ति उसके साथ एक हो जाती है, वो मेरे पूर्ण विवेक की हालत है जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म प्रभु ने मुझे दिया। ओम।